नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों, शांति रक्षा अभियानों को सुव्यवस्थित करने और मानवीय सहायता आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह आज नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने की समय सीमा 6 अप्रैल तक बढ़ाई और राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रवासियों को निर्वासित करने की नीति के अंतर्गत कोस्टा रिका अमेरिका से प्रति सप्ताह 25 निर्वासित प्रवासियों को स्वीकार करने के लिए सहमत। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्परता, शांति रक्षक अभियानों को व्यवस्थित करने और मानवीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के सशक्तिकरण का उल्लेख किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने वैश्विक शासन में सुधार को लेकर बातचीत की। फ्रांस में आयोजित बैठक में उन्होंने ऊर्जा चुनौतियों, उर्वरक आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा को लेकर ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को विशेष रूप से उठाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी करने के लिए फ्रांस की 2 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह आज नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह काठमांडू के शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में आज दोपहर होगा।
बालेंद्र शाह को कल RSP संसदीय दल का नेता चुना गया। इससे वे नेपाल के सबसे युवा निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की राह पर अग्रसर हुए हैं। उनकी पार्टी ने 5 मार्च को हुए संसदीय चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। रायपुर से राजनेता बने 35 वर्षीय बालेंद्र शाह देश में सर्वोच्च कार्यकारी पद संभालने वाले मधेस क्षेत्र के पहले व्यक्ति होंगे। नेपाल ने बालेन के नाम से लोकप्रिय पूर्व काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह और उनकी RSP को अगली सरकार बनाने के लिए चुना है। पिछले साल हुए जेन जी के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद हुए पहले आम चुनावों में पारंपरिक दलों को करारा झटका लगा है। श्री बालेन ने 4 बार के प्रधानमंत्री रह चुके KP शर्मा ओली को भारी अंतर से हराया था। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 2025-26 में 7.6%, 2026-27 में 6.1% और 2027-28 में 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की अंतरिम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती की परीक्षा ले रहा है। होर्मुज जल डमरू मध्य से माल ढुलाई रुकने और कुछ ऊर्जा अवसंरचनाओं के बंद होने या क्षतिग्रस्त होने से ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया है। इससे ऊर्जा तथा उर्वरक जैसी अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की वैश्विक आपूर्ति भी बाधित हुई है। इससे लागत बढ़ रही है, मांग पर दबाव पड़ रहा है और मुद्रा स्फीति का दबाव भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की विकास दर 2026 में 4.4% और 2027 में 4.3% रहने का अनुमान है। इसका कारण उपभोक्ताओं के लिए सरकारी सब्सिडी का समाप्त होना, ऊर्जा आयात की कीमतों में वृद्धि, रियल एस्टेट में जारी समायोजन और आर्थिक मंदी विरोधी उपायों से निवेश वृद्धि का कमजोर होना है। वैश्विक GDP वृद्धि 2026 में लगभग 2.9% पर स्थिर रहने का अनुमान है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
जापान के करीब 1000 सशस्त्र सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 81 वर्षों में पहली बार अगले महीने फिलीपींस की धरती पर कदम रखेंगे। फिलीपींस और अमेरिका के संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास बालिकतन के अंतर्गत उनकी वापसी हिंद प्रशांत सुरक्षा संरचना के विकास में एक बड़े बदलाव का संकेत है। फिलीपींस के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल रोमियो ब्रॉनर जूनियर ने फिलीपींस और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मेलन में जापानी सैनिकों की वापसी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उत्तरी जापान के होनशू प्रांत में यामाडा से लगभग 122 किलोमीटर पूर्व में कल रात 6.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप लगभग 9.5 से 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। भूकंप के झटके उत्तर पूर्वी जापान के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। भूकंप में किसी के हताहत होने का समाचार नहीं है। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की समय सीमा 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर फिलहाल बमबारी नहीं करेंगे। इस बीच हजारों अमरीकी सैनिक क्षेत्र के करीब पहुंच गए हैं। उधर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरी तरफ इसराइल ने हिजबुल्ला से लड़ने के लिए दक्षिणी लेबनान में और अधिक सैनिक तैनात किए हैं। ईरान की राजधानी और कई शहरों में भारी हमले हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के वैश्विक परिणाम कोविड महामारी की तरह विनाशकारी हो सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन कल मॉस्को में व्यापारिक नेताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले से भड़के संघर्ष ने कई उद्योगों को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र संघर्ष मौजूदा स्थिति को तेजी से प्रभावित कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय रसद, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान पैदा कर रहा है। ईरान में जारी संघर्ष और खाड़ी देशों में यूक्रेनी हथियार प्रौद्योगिकी में बढ़ती दिलचस्पी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की कल सऊदी अरब पहुंचे। यूक्रेन और सऊदी अरब के बीच हवाई सुरक्षा पर एक समझौता होने की उम्मीद है। खाड़ी देशों पर भी इन्हीं ईरानी शाहिद ड्रोनों से हमले हो रहे हैं जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर करता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि सऊदी अरब सहित मध्य पूर्व के कई देशों में 200 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन रोधी विशेषज्ञों को तैनात किया गया है। कोस्टा रिका ने घोषणा की है कि वो अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासियों को तीसरे देशों में निर्वासित करने की नीति में सहायता के लिए किए गए समझौते के तहत अमरीका से प्रति सप्ताह 25 निर्वासित प्रवासियों को स्वीकार करेगा। कोस्टा रिका की सरकार ने अमेरिका के विशेष दूत क्रिस्टी नोएम की यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्हें हाल ही में तथाकथित शील्ड ऑफ द अमेरिकाज की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है। कोस्टा रिका सरकार ने इस समझौते को एक गैर बाध्यकारी प्रवासन समझौता बताया है। अमेरिका की एक संघीय अदालत के न्यायाधीश ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ नशीले पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के अभियोग को फिलहाल खारिज करने से इंकार कर दिया है। मादुरो को जनवरी में सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद से अमेरिका में कैद कर लिया गया था। एक रिपोर्ट।
निकोलस मादुरो के बचाव पक्ष ने इस आधार पर मामले को खारिज करने की मांग की थी कि अमरीकी प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला सरकार मादुरो और उनकी पत्नी के कानूनी खर्चों का भुगतान करने में असमर्थ है। वरिष्ठ न्यायाधीश एल्विन हेलरस्टीन ने कहा कि वे फिलहाल मामले को खारिज नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसमें वेनेजुएला को कानूनी खर्च वहन करने से रोका जा रहा है। अभियोजकों ने इस प्रतिबंध का बचाव करते हुए कहा कि दंपति सरकारी वकील की सेवाएं ले सकते हैं। हालांकि न्यायाधीश हेलरस्टीन इस तर्क से सहमत नहीं दिखे। मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण के बाद ये दूसरी सुनवाई थी। वेनेजुएला के नेता और प्रथम महिला ने जनवरी में हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान खुद को निर्दोष बताया था। विश्व दर्पण समाचार के लिए समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप में कल वर्तमान चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। इस जीत के साथ भारत ने चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल ग्रुप बी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों, शांति रक्षा अभियानों को सुव्यवस्थित करने और मानवीय सहायता आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह आज नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP विकास दर 7.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की समय सीमा 6 अप्रैल तक बढ़ाई और राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रवासियों को निर्वासित करने की नीति के अंतर्गत कोस्टा रिका अमरीका से प्रति सप्ताह 25 निर्वासित प्रवासियों को स्वीकार करने के लिए सहमत। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।